أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جملہ کتنی دفعہ بولا یا کہا اور ہمارے کانوں نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یا ایھا الناس کا جملہ کتنی دفعہ آیا، لیکن ایک جملہ، اور وہ کیا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تو تمہارا اپنا ہی ذکر ہے. کہاں لکھی ہے یہ بات، یاد کیجیے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک کتاب کو جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم غور نہیں کرتے، تم سمجھ نہیں پاتے اس کو؟ تو یہ ہے وہ آیت جو مجھے آپ کو آج کا اس سیشن کو سننے اور سنانے پہ مائل کرتی ہے. محنت سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی محنت سایکم شتا، بکھری بھی ہوتی ہیں. تو آپ اور میں کیسے یہ بات جان سکتے ہیں کہ میری قیمت کیا ہے؟ یہ چیز ہم اپنی زندگی کی اچیومنٹ سے اور اپنے گول کی سیٹنگ سے جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی، سمجھ دی. وہ صرف روپے اور پیسے گننے کے لیے نہیں تھی، وہ ہر سال سالگرہ کے نام پر ایک اور فگر گننے کے لیے نہیں تھی کہ میری فلاں دوست کی برتھ ڈے کب ہے، میری کب ہے، اب میں کتنے کی ہوگی. کتنے کی اب ہو گئے آپ؟ 25 سے 30 پہ آ گئے، 30 سے 35 پہ آ گئے، 35 سے اب آپ 40 پہ آ گئے. کچھ تو 35 سے 40 اور 45 اور 50 پہ بھی آئے ہوں گے. کیا کھویا ہے؟ لکھیے ایک سوال، میری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، آج میرا اسٹائل بہت ٹو دی پوائنٹ ہوگا، کیونکہ جب کسی کو شعور دلانا ہوتا ہے تو پیار سے بچے کے پاس کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے اٹھ جاؤ نا بیٹا، اٹھیے نا، ذرا سا شعور دلانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہاتھ بھی لگانے پڑتے، اٹھ میرا بچہ، کبھی ہاتھ سے بلینکٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہم سوئے میں ہیں، ظاہری طور پہ تو روز ہماری مائیں یا ہمارے گھر والے یا جو بھی ہمارے ارد گرد ہے وہ ہمیں اٹھاتا ہے، لیکن ایک نیند ایسی چاہ گئی امت مسلمہ پہ جس کی ایک میں فرد ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آج ہم پر ایک اجتماعی نیند تاری ہے. غفلت کی نیند سو رہا ہے انسان، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے رمضان سے کیا لینا ہے، مجھے حج سے کیا لینا ہے، مجھے دن کی 5 وقت کی نماز سے کیا لینا ہے، اور مجھے زکوٰۃ سے کیا لینا ہے. تو ہم سب ذرا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں، 30 دن کا کاؤنٹر اگر ہمارے سامنے کھلا ہو، کیا کھویا ہے اس میں، کیا پایا ہے؟ کیا میرا کوئی گول تھا اس سال رمضان سے پہلے کہ اس سال میں نے یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا؟ چلیے چھوٹا سا بڑا جو بھی گول ہو، نو پرابلم. کچھ کا تو یہ تھا نا کہ اس سال 5 قرآن پورے کرنے ہیں، کچھ کا خیال تھا کہ میں نے 30واں پارہ حفظ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کے میرے چھوٹے چھوٹے گول جو ہماری عبادات کے طور پہ تھے یا ہماری میموری کے طور پہ تھے، آئیے خود سے سوال کرتے ہیں، کیا میں نے حاصل کیا؟ ایک گول جو ہم سبھی پچھلے کئی سالوں سے ہر سال رمضان کے آغاز میں اپنا بناتے ہیں، اور وہ کہہ کہ میں نے اس سال پورا دور قرآن سننا ہے، قرآن کا سفر پورا کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک نیا قرآن کا دور آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس کے بعد آپ وہی ہوں جو اس سے پہلے تھے، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. یہ ایسی کہ آپ ایف ایس سی سے نکل کر میڈیکل کے پہلے کالج میں آ گئے، تو کیا آپ ابھی بھی ایف ایس سی کے مائنڈ پہ ہی ہیں؟ تو یہ تو خطرہ ہے. 8th پاس کر کے 9th میں آ گئے، تو کیا ابھی بھی آپ کا مائنڈ 8th پہ ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن آگے نہیں بڑھتے. تو آپ میں رمضان سے کیا لے سکے؟ پہلا سوال جائزے میں، کیا میں نے فاتحہ سے ناس تک پورا دور قرآن اس کے ڈیو حق کے ساتھ لیے؟ نیت کی تھی، ارادہ بھی تھا، شروع میں شروع بھی کیا تھا، پھر بیچ میں بریک آ گیا، پھر تھوڑا چھوڑا. اگر آپ نے یہ گول بنایا تھا اور اچیو نہیں کر سکے تو لکھ لیجئے، اٹ ول لیٹ یو ڈاؤن. ہم کوئی نیت کریں، کوئی ارادہ کریں اور اس کے بعد اس کو اچیو نہ کریں نا، تو ہم ڈاؤن ہوتے ہیں. انرجی ملتی کہاں سے؟ یہ لوگ اتنے انرجیٹک کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو سوچتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہر نیکی آپ کو ایک انرجی دیتی ہے. آپ جب کوئی کام سوچتے ہیں اور وہ پھر پورا ہوتا ہے، اینڈ پہ آپ مثلا نماز میں سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، گویا کہ آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھ لیے. آپ فیل کریں گے سلام پھیرتے ہی آپ کو ایک انرجی محسوس ہوگی، الحمدللہ. کھڑی دیکھیں گے، ماشاءاللہ، جب اول وقت پہ نماز پڑھی، پورے خشوع سے پڑھی، ذرا بھی ہمارے ذہن میں کچھ خیال نہیں آیا. یعنی آپ اپنے اوپر لیتے جائیں گے. تو گویا کہ دن کی پہلی اچیومنٹ فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا. اسی طرح اب آپ چلیے رمضان کے ارد گرد گھومتے ہیں، 30 روزے رکھ لیے، الحمدللہ، آپ کو انرجی فیل ہوگی. کوئی ایک مجبوری میں 2 چھوٹے، چند چھوٹے، وہ اللہ کا حکم تھا، پھر رکھ لیں گے، क्योंकि मोमिन कभी भी बिला उज़र रोज़ा नहीं छोड़ता, कभी बीमार हो गए तो छूट गया, वो रख लेंगे, कोई रोज़ा सफ़र के लिए छूटे, इट्स ओके। अगर आप 30 रोज़े रख चुके हैं तो आपके जहन में ताकत आएगी। इसी तरह से आप देखिए कि आपने सोचा था कि मैंने इस साल रमज़ान बड़ा प्रोडक्टिव गुजारना है, कुट कुट चेक 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 ओके ओके किया, आज आप एनर्जी फील करेंगे। दौरे कुरान सुनाना था, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे तो कोई पूछे, पहाड़ सर करने से ज़्यादा बड़ा काम लगता है मुझे एक पारा आपके सामने रखना हर साल 2.5 घंटों में, 2.5। यकीन करें, मैं बार बार अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह मेरे बस का काम नहीं है, एक समंदर है, मैं इसको कूजे में नहीं बंद कर सकती, मेरी तो स्किल्स भी कोई नहीं इतनी बड़ी, ना मेरा दिमाग इतना तेज़, ना मेरी ज़ुबान इतनी शार्प, ना मेरा इंटेलेक्ट इतना अच्छा, अल्लाह मैं करूँ तो कैसे करूँ, इधर से पकड़ूँ तो उधर गिरता है। और जो लोग नए नए कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं वो मेरी बात समझेंगे, समझ नहीं आती कौन सी आयत पकड़ें और कौन सी छोड़ें, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप अपनी ही हैसियत के मुताबिक सही उस काम को कर गए, ताकत महसूस होती है। कोई मेरे दिल की कैफियत तो जाने, जब पारा पूरा हो जाता है वक्त पे, 1 मिनट भी ऊपर हुए और जो दिल से बात कहने का इरादा था या जो उसका हक था वो पूरा आता है, उस दिन बंदा ऐसे रिलैक्स होकर उठता है अपनी जगह से कि क्या कोई खाने के मील से या किसी भी दावत में खाने की टेबल से उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल के अंदर के गहराइयों से निकलता है। और मुझे यकीन है यही कैफियत आपकी भी होती है जब आप लोग सुनते हैं, और जो कहीं भी सुनाते हैं उनकी भी यही होती होगी, ये हम सब की सेम चीज़ है, ये एनर्जी लेवल स्ट्रांग होता है। हम कुछ सोचें कि मैंने करना है और वो कर लें, हमें से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। अब इसी चीज़ को आप अपनी हर नेकी पे लगा लीजिए, बिल्कुल जब आप कोई काम करना चाहते हैं और वो कर लेते हैं तो खुशी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, यही आपकी एनर्जी है, यही आपका मोटिवेशन है। आप कहते हैं किसी से 5 मिनट बात कर ले मोटिवेट हो जाते हैं, कोई 2 घंटे भी बात करे तो वो भी थका होता है, एंड पे आप भी जमाइयाँ ले रहे होते हैं, फ़र्क किस बात का है, उस चीज़ को अपने ऊपर लेने का, तो पाएगा वही। एक जुमला लीजिए फिर आगे ले चलती हूँ, पाएगा वही जो पाने की तलब रखेगा। अगर आपकी मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं है, ये गोल ही थे ना जो चंद शेयर किए हैं कि मैंने ये भी करना ये भी करना ये भी करना, और इससे आगे बढ़ के तो भी बात ही नहीं छेड़ी, करेक्टर बिल्डिंग। दिल पे हाथ रख कर पूछिए, क्या इस साल के दौरे कुरान के बाद मुझे अपनी पर्सनैलिटी में एक नयापन नहीं दिख रहा, अपना अपना नाम लिखे, मुझे अपने अंदर एक नई इफ़त तो नहीं दिख रही, मुझे अपने अंदर एक नई ताहिरा दिख रही है, मुझे एक नई साइमा दिख रही है, मुझे एक नई शाहीन अपने अंदर दिख रही है। पूछिए खुद से, वल्लाह ही आईने के साथ खड़े होकर बातें करना सीखे, दूसरों के सामने जुबानें गुम हो जाएंगी, हर वक्त दूसरों के आईनों में देखते देखते हमने खुद को देखना ही छोड़ दिया, हम तो अपने मन में पाके सुराग ज़िंदगी ले ही ना पाए आज तक। क्यों कहते हैं कि डूब के पा जा अपने मन में सुराग ज़िंदगी, ये सुराग क्या होता है, ये सिरा होता है, राज क्यों मिली ज़िंदगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ रमज़ान के इस छोटे से गोल से ऊपर लेकर, अपनी उम्र लिखे, छुपा के लिख लें, कोडवर्ड में लिख लें कि आगे पीछे 0+ वगैरह लगा लीजिए, ताकि कल आपके नोट्स को देखे तो शायद उसको पता ना चल जाए आपकी उम्र क्या है। हालांकि हम हर चीज़ फ्लॉन्ट करते हैं और उम्र छुपाते हैं, है ना अकलमंदी, हर चीज़ का एक्सपोजर, ये खाया ये पहना, ये ईद का जोड़ा, ये ईद की पार्टियाँ, ये दावतें, यानी सोशल मीडिया को हमने पर्सनल मीडिया बना लिया, आज एक अलग इशू है, इसको तो ना छेड़े, छोड़ दें इसको। लेकिन हम हर चीज़ में फ्लॉन्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, मैं ऐसी, मैं मेरी, मैं प्रोफाइल पिक्चर्स देख ले कोई, हमारी, हमारे स्टेटस कोई देख ले तो पता लग जाएगा कि हमारी अपनी नज़रों में औकात क्या है, ये लव स्टेटस बोला ना, आज के बाद कभी भी इस लफ्ज़ को जब बोले और अपना स्टेटस सेट करें तो इसको उर्दू में भी पढ़िएगा, अगर मैं बहुत ही टिपिकल ट्रांसलेशन करूँ ना स्टेटस का, तो औकात होती है, मेरी औकात क्या है जी। देखिए ना, उर्दू में बड़ा मारूफ लफ्ज़ है, लोग स्टेटस ही बोल देते हैं, फलां बड़ा आला स्टेटस का बंदा है, वो लो स्टेटस का बंदा है, वो सियासी स्टेटस है उसका जी, है ना, पढ़े लिखे लोगों में बैठता है। तो ये जो आप और मैं स्टेटस पे एक पिक्चर लगाते हैं या एक मैसेज डालते हैं ना, ये हमारी औकात होती है। तो कभी कोई तस्वीर चूज़ करते हैं कि ज़रूर सोचिएगा मेरी ये औकात है, जानवरों की तरह ज़ुबानें लटकती बाहर दिखाकर मैं अपनी क्या औकात दिखा रही हूँ, इल्ला माशाल्लाह। डिस्टॉर्टेड पिक्चर्स, कार्टूनिक पिक्चर्स, अपने आप को 50 साल से नीचे लाते लाते 20 साल की लड़की, मुंह में च्युइंगम का एक पटाखा फेंटती हुई और ग्लासेस लगाई हुई एक मॉडर्न लड़की साबित करती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उठेंगी तो घुटने में दर्द शुरू हो चुका होगा अगर 50 साल की हो गई हैं तो। थोड़ी देर बैठेंगी तो कमर दुखेगी, वो नहीं छुपेगी, आपकी असल नहीं छुपेगी, लेकिन लोगों को आप फैंसी बन के दिखाते हैं, वो शक्ल होती नहीं जो वो पिक्चर ब्यूटी के नाम पे खुद अपने खुद मुसव्विर बने बैठे होते हैं और चूज़ करते हैं कि नाक कैसी रखूँ तो कान कैसे रखूँ। उन्होंने तो अपने कैमरे बेचने, वो तो लगाएंगे, उन्होंने ये ऑप्शंस ना दी तो अगला फ़ोन कौन खरीदेगा, नेक्स्ट आईफोन खरीदेगा कौन। तो समझ गए, अपने स्टेटस को पहचानिए, और अगर मेरी बात सुनने वालों में 35 से प्लस की एज के लोग सुन रहे हैं तो ये तो मान लें कि बैक ट्रैक शुरू हो चुका है। जैसे 15 रोज़े पे निस्फ था ना, तो फिर अगले 15 तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह से पिछली ज़िंदगी में अगर आपके मेरे पास आज तक यानी 35 की एज तक अगर मैंने कुछ नहीं पाया तो कब पाऊंगी। बस इन चीज़ों पे गौर करते चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम जब किसी चीज़ की नियत करते हैं और फिर उसको पा लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इतनी बात तो अब काफ़ी समझ आ गई है। और जब हम सोचते ही कुछ नहीं तो पाएंगे क्या। मसलन आप घर बैठे एक बंदे को फ़ोन करते हैं, तुम लाहौर पहुंच गए हो, वो कहते मैंने कब कहा था लाहौर जाना, अच्छा मेरा ख्याल था कि तुम जा रहे होगे। जिसने सोचा ही नहीं कि वो लाहौर जाए, वो क्यों जाए, क्योंकि जो लाहौर जाना चाहता है वो गाड़ी खोलेगा, पेट्रोल डालेगा, अगर रास्ता नहीं पता तो लाहौर की तरफ की डायरेक्शन लगाएगा, नेविगेटर बता रहा है 3 घंटे का सफ़र है, फिर वो गाड़ी को लेके चला पड़ेगा, और चलते चलते वो गाड़ी कभी गर्म होगी कभी ठंडी होगी, बीच में कुछ झटके आ जाएंगे, कभी को बम्प्स आ जाएंगे, कहीं रास्ते में वो रुक जाएगा, ट्रैफिक में कम हो जाएगी, कभी रास्ते में रोड का काम हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है ना। इन सारी चीज़ों में से गुजरते गुजारते बिल आखिर वो लाहौर का साइन देखेगा, सॉरी थकन दूर हो जाएगी। अब एक शख्स जो ना घर से निकले, ना रोड मैप है उसके पास, ना लफ्ज़ लाहौर है, हम बस गाड़ी और फुल पेट्रोल से भरी हुई है, चलाए किधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, एंड पे किधर होगा, वो फैसलाबाद में ही होगा, वो घंटा घर के गिर्द घूम रहा होगा, वो डी ग्राउंड में घूम रहा होगा, वो पीपल्स कॉलोनी की गलियों में हो सकता है, वो सिटी में चला जाएगा, लेकिन वो लाहौर नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक नुकसान हो चुका होगा, उसकी गाड़ी की टंकी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी होगी, चमकती सफ़ेद गाड़ी जो सुबह ही ड्राइवर ने धोई वो बिल्कुल डर्टी हो चुकी होगी, डस्टी और मडी, और उसकी हो सकता है बैटरी पे भी बोझ पड़े क्योंकि वो घूम इधर ही रहा। तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, पेट्रोल भी लग रहा है, गाड़ियाँ भी निकली हुई हैं, पता नहीं है किधर जाना है। तो एक जुमला जो बहुत ही आपका जहन खोलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में कि जो लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हीं में से किसी की ज़ुबान से सुना या लिखा हुआ एक जुमला है कि मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क मंजिल का है। बात समझ गए, मुसाफिर कौन है जो घर से निकलते वक्त डेस्टिनेशन को चूज़ करके टाइम को सामने रख कर रास्ते के सारे हिकअप्स को सामने रखते हुए घर से निकलता है, और आवारा गर्द वो है जिसको आप कहते हैं विंडो वॉचिंग, फ्लर्टी, छिछोरा, कभी एक लड़की के पीछे भागेगा, कभी बाग में किसी और लड़की को फूल फेंकेगा, किसी के पास नैपकिन फेंकेगा और एक्सक्यूज़ मी करके उसको पकड़ाएगा, जो मर्ज़ी कह ले, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा। बस अपने आप से सवाल कीजिए, जुमला तो अच्छा नहीं लगा मुझे लेकिन फ़ायदे की चीज़ है, क्या मैं ज़िंदगी के सफ़र में मुसाफिर हूँ या फिर मैं एक आवारा गर्द इंसान हूँ। वॉन्डर ब्लाइंडली, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी कौम जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र है कुरान पाक में, बनी इसराइल, उनके नाम के साथ ये लफ्ज़ बोला है, या महून, वादिये तीख के 40 साल वो या महून, या महून का अगर मैं ठेठ तर्जमा करूँ तो ये आवारा गर्दी बनती है। वॉन्डर ब्लाइंडली, अंधाधुन, जिस तरह आप कहते हैं ना, आप यूके में अगर अंडे ख़रीदें तो अक्सर एग्स के बॉक्स पे लिखा होता है फ्री रेंज मुर्गियों के अंडे। पिछले सालों में किसी वक्त यूके में आई तो ग्रोसरी में जब सिस्टर को लेके आई तो मैंने कहा ये फ्री रेंज एग्स क्या होते हैं, तो उन्होंने यही लफ्ज़ बोला था, आवारा गर्द मुर्गियों के अंडे, मुराद है कि नेचुरल हैं, देसी अंडा कह लें अपनी ज़ुबान में, यानी इनको कुछ भी फूड नहीं दिया गया या आर्टिफिशियल खाने नहीं दिए गए मुर्गियों को, ये बस खुद ही चर चुक के आ गई। तो फ्री रेंज मुर्गियाँ, और इसी तरह से दूसरी चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो कुछ लोग ज़िंदगी के इस सफ़र में आवारा गर्दगी कर रहे हैं। पहले तो जाके आवारा गर्दी करनी पड़ती थी ना सड़कों पे और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर धक्काशाही करनी पड़ती थी। आज तो ये साइबर आवारागर्दी भी है, नेट पे बैठे इधर से उधर झूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं और उधर चाका झांकी और उधर चाका झांकियाँ करते रहते हैं। क्या समझ आई? यही बात समझ आ गई जो कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा सा समझिएगा कि हमारा जहन कैसे काम करता है। इंसानी जहन एक पावर हाउस की तरह होता है। आपने पाकिस्तान में वापटा का नाम सुना होगा, इसी तरह हर मुल्क का कोई ना कोई पावर स्टेशन, कोई पावर का यूनिट तो होता ही होगा ना। उसका काम क्या होता है? पूरे शहर के लोगों को बिजली प्रोवाइड करता है। ये जो आप कहते हैं ना बिजली चली गई, तो वो कहाँ जाती है? वो आपके घर नहीं है, लेकिन वो वापडा स्टेशन पे बहुत सारी पड़ी होती है और इसी तरह की कुछ और कंपनीज के पास भी है। तो जहन जो है ना ये पावर हाउस की तरह काम करता है। इस पावर हाउस की एनर्जी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल तब होती है जब इसे अपने गोल्स का पता होता है। लेकिन ना जब आप कनेक्शन लेते हैं, हमने जोराबाद में भी अपने एक इदारे के लिए जब बिजली का कनेक्शन लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि आपको लोड बहुत चाहिए इसलिए आपको ट्रांसमीटर लेना पड़ेगा। शायद उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर ही बोलते हैं, वो जो बड़ा सा एक डंडे पे लगा होता है बाहर, क्योंकि इतने एसी चलने हैं तो ये मौजूदा सिस्टम इसके लिए काफ़ी नहीं। मेरा ख्याल है वो अप्लाई किए हुए शायद 10-11 महीने के बाद वो जाके कहीं मंजूर हुआ। तो आप अपने जहन को पहले कुछ गोल देते हैं, लिखिए। जैसे आपको अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए रब्ता करना पड़ता है ना बिजली वालों से, कितनी किस यूनिट की, कितने हाउस पावर, दिस एंड दैट, इस तरह आपके जहन को हर रोज़ एक गोल चाहिए होता है। आप अपने जहन को जो गोल देंगे ना वो उसके पीछे लग जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा गोल है कि बुरा, हलाल है कि हराम। बिल्कुल बच्चे को जहन में लाइए, एक छोटा सा बच्चा है ना आपके घरों में, आप उस बच्चे को जहन में रख के देखिए, उसको एक गोल चाहिए। चाहे वो कुर्सी तोड़ने का गोल दे दीजिए, उसको सारे किचन के बर्तन लाकर ड्राइंग रूम में सजाने का गोल है, वो खुद ही बना लेता है। लिखिए, ज़िंदगी में जब गोल नहीं होता तो रोल नहीं होता। आपका मैदा खाना मांगता है, आपके लंग्स ऑक्सीजन मांगते हैं, इसी तरह से आपका जहन गोल मांगता है। आज से एक जुमला लिख लीजिए, आपका जहन गोल मांगता है। मुझे सुबह उठ के कहते बताओ क्या करूं। जैसे मुलाजिम घर में आए तो कहे जी के साहब जी आज क्या करना है, माली है मसलन, वो कहता है अच्छा ये घास काट लो, ये कर लो, ज़रा पत्ते तुला दो, ये सफाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बाजार से जाकर 2 नए पौधे भी लगा दो। माली बाबा खुश है क्योंकि उसको काम मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से आपकी कुक आती है, भाजी आज क्या पकाना है, आप उसको 2-4 जुमलों में डिफाइन करें, वो खुशी खुशी किचन में जाएगी, चलो जी 4 घंटे का काम मिल गया। इसी तरह आपका मेरा जहन दिन में कई बार मांगता है भाई क्या खाना है, क्या पीना है। तो जब जिस्म के हर उसको कुछ चाहिए था तो आपके दिमाग को क्या चाहिए? यानी आज लिखिए, व्हाट इज़ द फूड फॉर ब्रेन। देखिए ब्रेन लव समझिएगा, एक होता है माइंड, एक होता है ब्रेन, दोनों में भी बड़ा फ़र्क है, इस वक्त नहीं छेड़ती, लेकिन हमारे जहन को गोल चाहिए होता है। गोल समझ गए ना, कोई चीज़ जो आपने आज अचीव करनी है। ये जो बच्चे बहुत शरारतें करते हैं और माँ बाप और दादी दादा की डांटे सुनते हैं ना, असल में वो आपसे गोल चाहते थे और आपने जब उसको गोल नहीं दिया ना, तो उसने कहा मेरा ख्याल है आज का गोल यह है कि बाहर क्यारियों से सारी मिट्टी लाकर आज पूरे पोर्च में फैलानी है। आपने तो उसको बंद कर दिया अंदर कि ना 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 ये क्या करेगा। चुपके से किसी मेहमान के आने पे दरवाज़ा जो खुला ना, तो उसने अपनी जान बचाई, पकड़ के कुदाल लेके निकल गया। आपको पता ही नहीं वो किधर है, थोड़ी देर बाद कि वो किधर है, बच्चा किधर है, हाँ मूसा किधर है, पता चला वो बाहर जाकर अपना गोल अचीव कर रहे हैं। आप रुक सकते ही नहीं अगर आपका कोई गोल है उसको अचीव करने से। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, फिर वही बात, पिछले 5 साल पहले आप किधर थे, आपने इधर ही और किधर जाना है, और पंजाबी स्टाइल हो तो बात और भी ज़रा कच्ची करेंगे। अगर आप 5 साल पहले भी वहीं थे जहाँ आज हैं, पर लोगों से पूछा जाए भाई आगे क्या प्लान है, तो क्या प्लान है, इधर ही मर खप जाएंगे, यही ज़िंदगी है बस, ख़त्म, और क्या, रुल जाएंगे इधर ही, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वहीं समझ लीजिए कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं हैं। क्यों दो ही लोग एक ही स्कूल के पढ़े हुए, एक ही उम्र के ऑलमोस्ट, एक ही कल्चर के, एक ही दिन उनकी डेटशीट थी, एक ही दिन उनका रिजल्ट डे था और एक ही दिन अगले कॉलेज में गए, लेकिन बाद में दोनों की ज़िंदगी का अंजाम मुख्तलिफ की होता है? क्यों क्लर्क सारी ज़िंदगी क्लर्क ही रहा और क्यों सारी ज़िंदगी एक ड्राइवर ड्राइवर ही रहा? अक्सर जब लोग ड्राइवरों को डांटते हैं ना या किसी भी अपने मुलाजिम को, तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है कि ये बेचारा गरीब है, इसलिए फिर मेरा दिल अंदर से कहता है गरीब होने से नहीं डांट खाता कोई, ये डांट इसको इस सज़ा में मिल रही है कि इसने अपनी ज़िंदगी का ये गोल ही नहीं बनाया कि ये ड्राइवरी तो एक रास्ते का सफ़र है, मैंने आगे जाकर गाड़ी वाला बनना। जब तक आप बड़े गोल नहीं बनाएंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं तो अल्लाह दे क्यों। यही है जन्नत ना मिलने वाला नुस्खा, ये भी समझ लें। अक्सर लोग इतराज़ करते हैं, गैर मुस्लिमों को जन्नत क्यों नहीं मिलेगी, डिसबिलीवर्स को अल्लाह जन्नत क्यों नहीं देगा, चले सख्त लफ्ज़ बोल रहे, काफिरों को क्यों नहीं जन्नत मिलनी। तो सीधा सा जवाब है, उन्होंने मांगी कब थी। देखिए ना, गिला तो वो करेगा ना जिसने ऑर्डर किया होटल में जाकर, मुझे ये बिरयानी और कुरमा और चावल और सालन जो कुछ भी है दे दे। 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो एकदम गुस्से में पाँव पटकता बच जाएगा रिसेप्शन पे, भी मेरा ऑर्डर ही नहीं आया, वो जाके चीखेगा ना। आप कोई जाकर बैठ जाए पानी का ग्लास लेकर, इधर देख मैसेज देख कर कुर थोड़ी, क्या वो जाकर गुस्सा कर सकता है कि खाना क्यों नहीं आया, तो आगे से क्या कहेंगे, आपने कहा कब था। तो लिखिए, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में गोल्स अव्वल तो होते नहीं हैं, और अगर हैं भी ना तो क्लियर नहीं होते। हम बस ये काम करते हैं, अल्लाह का काम करना है, अल्लाह के रास्ते के काम करना, हम अंसारुल्लाह, हम जिम्मेदार हैं। आज भी 90% वो लोग जो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे ना, वो मान ले कि उनको पता ही नहीं कि जिम्मेदार हो के गोल क्या, तो उनका गोल ही नहीं है, उन्होंने सोचा ही नहीं है कि हमने कोई चेंज लानी है, हमने कुछ जलना है कुड़ना है दुखना है, लाला का बाखियन वाली कैफियत लानी है। जब उन्होंने सोचा ही नहीं है तो वो कैसे आइडियाज़ आए। लिखिए, आइडियाज़ सिर्फ उसके दिमाग में आते हैं जिसका गोल है। बस मेरा गोल है कि मैंने अंधेरे को रोशनी में बदलना है। अब मैं कमरे में जाते ही बटन ढूंढूंगी, टटोलूंगी, इसमें लाइट का बटन कौन सा है, इसमें पंखे का बटन कौन सा है, फिर मैं देखूंगी बटन तो मैंने दबा दी लेकिन अंधेरा क्यों है, वो अच्छा बल्ब लगा ही नहीं हुआ। बस मेरा ख्याल है बात समझ आ गई है। जब तक आपकी ज़िंदगी का विजन क्लियर नहीं है, माजरत के साथ माफ़ी मांगूंगी आपसे पहले, लेकिन एक जुमला बोल दूँ, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपने मांगा नहीं, जो आपने सोचा नहीं है। आप देखते हैं कि कभी कभार एक आम इंसान भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम होता है, और एक ज़हीन फतीन IQ लेवल 10 से भी ऊपर वो कामयाब नहीं होता। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़हीन नहीं होते लेकिन कामयाब हैं। पैसे को कामयाबी कहते हैं तो मिलियनेरियन है, इल्म को कामयाबी कहते हैं तो लोग उनको आलिम से मारूफ करेंगे, कैरियर को या किसी इंटेलेक्चुअल स्टेटस को दुनिया में देखते हैं, सियासत में जाने को या बहुत ही बड़े लोगों में उठना, वो हैं लेकिन वो ज़हीन फतीन नहीं थे। क्या था उनका गोल था। डोंट एक्सेप्ट योर फेलियर, क्यों नाकामी को लेके बैठ गए दिमाग में कि मैं ये कर ही नहीं सकती, मेरे से तो ये होना ही नहीं। सिर्फ वो बंदा पीछे रहता है जिसका नंबर एक गोल नहीं होता, पहली बात, और दूसरी बात है रॉन्ग गोल होता है। हम सारी ज़िंदगी वो करने की कोशिशों में होते हैं जो हम कर ही नहीं सकते। देखिए ना, बिल्ली कोशिश कर ले तो क्या वो खरगोश बन जाएगी, नामुमकिन है। तो ये नामुमकिन अनअचीवेबल गोल है, ये भी एक रीज़न लिख लीजिए कि बहुत सारे लोगों के गोल हैं पर रॉन्ग गोल है, कुछ के गोल हैं लेकिन क्लियर नहीं, और कुछ का हाल यह है कि गोल बना के गोल गोल ही घूमते रहते हैं। इसी तरह बहुत आम दर्जे के लोग भी कामयाब हो जाते हैं जब क्लियर गोल्स के साथ चलते हैं। देखिए, UK में बैठ के आज से आप बात कर रही हैं ना, जो बात मैंने लोगों से सुनी मुझे नहीं पता सही है कि गलत, मारूफ है तो ठीक भी होगी। और वो कह के मार्क्स एंड स्पेंसर जो यहाँ का एक बड़ा मारूफ ब्रांड है, आज खाने तक MK के नाम पर बिकते हैं, और कपड़े तो बिकते ही थे, जूते तो परस तो होंगे ही। कहते हैं कि इन लोगों ने एक रेड़ी पे स्वेटर बेचने से काम शुरू किया था, आज वो इतना बड़ा मार्क MQ बन गया, मार्का क्यों बन गया। अमेरिका के मार्के भी बहुत सारे हैं, फॉलीज क्यों फॉलीज हैं, बेड एंड बाथ क्यों बेड एंड बाथ है, सीयर्स क्यों है, इसलिए कि उन्होंने गोल बनाए थे, वी वॉन्ट टू ग्रो, वी वॉन्ट टू ग्रो, और आई वॉन्ट टू ग्रो। तो जब तक आपके पास एक क्लियर कट गोल नहीं है, आप नहीं चलेंगे, रो लें जितना रोना है अपने ऊपर, आज मर जाएंगे तो भी कुछ इतना ही होना है अपने हाथ में, जो आज से 5 साल की ज़िंदगी मिल भी गई ना तो भी वही मिलना है आपको। मत कंपेयर करें किसी दूसरे से खुद को, मत कम्पीट करें किसी और से, हर एक को हर चीज़ नहीं सजती है। कपड़ा दूसरे को पहना हुआ बड़ा सजा, आप कहते लेना ही है, पहन नहीं है, आप पहने उस, आपको ज़रा भी नहीं सजना। किसी को पिंक कलर बड़ा सूट करता है, आप पहनेंगे तो हो सकता है कि अजीबो गरीब लगने लग जाए। किसी के पाँव के साइज़ के जूते में अपना पाँव डालकर देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। तो याद रखिए, बहुत सारे लोगों के गोल्स होते ही नहीं है, और हैं तो क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है। और आप में अगर अपनी ज़िंदगी में इस बात को रख लें कि आम इंसान भी कामयाब हो जाता है जब उसको ज़िंदगी का गोल पता चलता है और फिर वो उसके मुताबिक कोशिश करता है, और इसके बरक्स ज़हीन शख्स भी अपने मकसद के वाज़े न होने की वजह से ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है।